धवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर छह ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् साहु वज्रायिरिये अरहन्ते वन्द्यूण सिद्धेवी जे पंच लोग वाले वोच्छं बंदस्त सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो तृतीय खंड है उसका नाम है बंध स्वामित्व विचय, और इसकी चर्चा पहले हम गुणस्थानों में करेंगे, बाद में मार्गणस्थानों में करेंगे। यहाँ हाँ आपके प्रश्न है, बोलो। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक। हाँ उन प्रकृति स्वोदय परोदय नहीं होते, उनका बंध बंध परोदय स्वोदय होता है। हाँ तो बंध देखो, तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या उसका बंध होता है? कभी नहीं होता है, इसीलिए उसको स्वोदय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इसका? हम केवल वो है कि नहीं ऐसा प्रश्न नहीं पूछना, क्यों यानी उसका अर्थ क्या है? जैसे उसका स्वोदय परोदय अर्थ नहीं है। स्वोदय का जिस प्रकृति के उदय में जिस प्रकृति बनती है उसको स्वोदय के, जैसे ज्ञानावरण का उदय भी है और ज्ञानावरण का बंध भी है, क्योंकि ज्ञानावरण का बंध दसवें तक है और ज्ञानावरण का उदय बारहवें तक है, इसलिए उन प्रकृतियों को सोदय कहेंगे, क्योंकि उसके उदय में ही वो बंधेगी, क्योंकि उदय चल ही रहा है। कुछ प्रकृतियां ऐसी परोदय में भी बनती है सोदय में भी, जैसे साता असाता अन्य भी जो कितने जो है, तो दूसरे नीच गोत्र के उदय में भी उच्च गोत्र बन सकता है ना, बनता भी है अल्टरनेटली, तो वो तो सोदय परोदय है। और जो परोदय में ही बनती है जैसे तीर्थंकर है आहारक है, ये कैसे परोदय में ही बंधेगी? ख्याल में आई ना बात? जैसे देवगति है देवगत्यानपुरी नरगति नरगत्यानपुरी देवायु नरकायु, अपने उदय में कभी नहीं बंधेगी। वैकृत वैकृत अंगोपांग के उसके उदय में वैकृत अंगोपांग शरीर नहीं बंधेगा, ये सारी कैसे मात्र परोदयी है, ये उसका अर्थ है। और कोई प्रश्न है? नहीं, अभी आगे बढ़ते। हम आए थे पेज नंबर 29 पर, आठवीं पुस्तक के 29 पृष्ठ पर आए हम। मोक्ष आपको समझना था ना, यहाँ बंध की चर्चा चल रही है। बंध यानी क्या? जुड़ जाना। अब क्या कहते हैं, फेविकॉल लगा के चिपकाते हैं ना, तो यहाँ कौन किससे चिपका है? तो हम तो जीव है, तो जीव है कैसे है? तो हम इनविजिबल है, परंतु ये विजिबल क्या है? ये तो पुद्गल कहलाता है, इसको कहते पुद्गल। ये शरीर जो है हम देखते हैं ना, समबडी इज डेड, तो क्या होता है? शरीर पड़ा रहता है, और जीव डेड बॉडी कहते हैं, पहले लिविंग कहते थे। क्यों? वहां जो लाइफ है वो है जीव, तो मैं स्वयं जीव हूं, और ये जो दिखता जो है वो है पुद्गल, उसको पुद्गल कहते हैं, मैटर है वो। तो ये क्यों ऐसा शरीर क्यों हर समय? अभी ये शरीर छूट गया, कोई मर गया तो क्या होता है उसका, उस जीव का क्या होता है? तो अन्य भाव में चला जाता है, वहां नया शरीर धारण करता है। जैसे हम देखते हैं कोई बच्चा जन्मता है, माँ के पेट में आया, तो पहले कहीं से मर कर यहाँ आया, फिर उसने नया शरीर धारण किया, यहाँ से मर कर अन्यत्र चला जाता है, वहाँ नया शरीर धारण करता है। ये कब से चल रहा है? हाँ, नो बिगिनिंग। तो ऐसे हर भाव में चले जाएगा, नया नया शरीर धारण करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसका नाम है कार्मण शरीर, यानी कर्म जिसको कहते हैं। तो ये कर्म क्यों बनते हैं? तो हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष यानी जो हमारे पैशंस जो होते हैं, कभी क्रोध मान माया लोभ होते रहते हैं, और हम जो मिथ्या मान्यता क्या है, जिसको मिथ्या तो कहते हैं, शरीर मैं हूं ये तो मैटर है और मैं तो जीव हूं, फिर जीव क्या सोचता है कि यही मैं हूं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है, एक दूसरे के साथ यही बोलते कि ये मैं हूं, फिर इसको गोरा करना, अच्छा करना, उसको नहलाना धोना और क्या क्या कपड़े पहनना, ये सब ये मैं हूं मानकर कर रहा है, ये उसकी भूल है। हाँ हाँ ये सब, ये खाओ बादाम खाओ तो बुद्धि बढ़ेगी और वो मीठा खाओ तो हाइट बढ़ेगी, ये क्या है सब ये नहीं, वो ये इसको मैं मानकर कर रहे, वो खाने पीने का निषेध नहीं हमारा यह मैं हूं मानकर कर रहे, इसके कारण ये कर्म आकर जीव के साथ चिपकते, उसको कहेंगे बंद होता है। मैं आपकी भाषा में बताती हूँ, ये लोग कुछ समझेंगे नहीं इसको। हाँ तो ये बंद होता है, तो ये बंद में कितने कितने प्रकृति आती, क्यों होता है, कितने टाइम तक रहता है, उसमें जो गुणस्थान जो है स्पिरिचुअल लेवल से अलग अलग है, उसमें कहाँ कौन सा बंद होता है, उसकी सब हमारी चर्चा चल रही है। कितनी बातें आपको नहीं समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, बीच में कुछ आपको मन हुआ तो ये जरा मुझे समझाओ तो हम समझाएंगे आपकी भाषा में। हाँ तो यहाँ हम सारी ये बंध की चर्चा, क्यों हमें बंध से मुक्त होना है, इसलिए किसी को बांध के रखा है, तो कहाँ बांध के रखा है, कैसे बांध के रखा है, ये पहले समझेगा तो उसमें से छूटने का मार्ग भी ढूंढेगा। आपका नाम मोक्षा है, तो अनेक जीव अनंत जीव आज तक मोक्ष चले गए, यानी उन्होंने मोक्ष अवस्था प्राप्त की है, उनकी जो अभी तो हम कैसे मनुष्य है, कोई देवगति है, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह, वो सारे तिर्यंश है, तो ऐसे ही जीव प्योर फॉर्म में आ जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष। आपका नाम ही मोक्ष है ना, मोक्षा मोक्षा है ना, वो मोक्ष का ही मोक्षा किया, उसको फेमिनाइन बनाना था ना, इसलिए मोक्षा कह दिया तो उसका अर्थ क्या है, जीव इन इट्स प्योर फॉर्म, ये उसका अर्थ है। तो कैसे प्राप्त होगा, इसलिए हमको बंध के सभी विस्तार से डिटेल समझेंगे तो इसमें से छूटने का मार्ग भी हमें मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम आए थे 29 नंबर के पृष्ठ पर, 29। हमने उन अलग अलग 23 प्रश्न देखे थे जब बंध की चर्चा आती थी। पांचवें नंबर के सूत्र में उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि 16 प्रकृतियों संबंधी वो कौन बंधक है, कौन सी 16 प्रकृति जो 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है। आप रिपीट करेंगे उन पर, पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पांच अंतराय, हाँ उच्च गोत्र यशस्वी, जो 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है। प्रश्न तो पूछा था इसके बंधक कौन है और अबंधक कौन है, और उत्तर में भी ये बताया था कि मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक, तो उसमें उन्होंने उसके बंधकों के ने स्वामित्व भी बता दिया, और अंतिम समय तक तो क्योंकि बाद में प्रश्न पूछा गया था, ये बंध अध्वान कहते कहां से कहां तक बंध है, उसको कहेंगे बंध अध्वान। और फिर दूसरे भी प्रश्न पूछे थे, क्या पहले समय में बंध विच्छित्ति होती है, क्या बीच में होती है, क्या लास्ट में होती है, उसका भी उत्तर उसमें सूत्र में ही दे दिया उन्होंने, 6 नंबर के सूत्र में उत्तर दे दिया। फिर और भी कई प्रश्न पूछे गए थे, क्या पहले बंध विच्छित्ति होती है कि पहले उदय की विच्छित्ति होती है, विच्छित्ति है उसका एंड, क्या दोनों एक साथ युगपत उसके बंध उदय होता है, दो युगपत विच्छित्ति होती है, उसके भी यहाँ उन्होंने उदय विच्छित्ति के सारा विस्तार से बता दिया, और बंध विच्छित्ति तो वो भी बता दिया। तो हमें कंपेयर कर सकते हम कहाँ किसकी विच्छित्ति है, पहले है क्या बाद में है क्या साथ में है। अनेक ऐसे प्रश्न हुए थे ना यहाँ पर, अपने उदय में बनती है कि पर के उदय में, के स्व पर उदय में बनती है, तो वो सारी उन्होंने विस्तार से चर्चा की, कौन सी स्वोदयी बनने वाली प्रकृतियां है, कौन सी परोदय में बनने वाली प्रकृतियां, और कौन सी स्वपर उदय में बनने वाली प्रकृतियां। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों के हम यहाँ उत्तर देखते देखते यहाँ पर आ गए थे। फिर वो प्रत्ययों की बात कल आई थी, प्रत्यय ने बंध के कारण, बंध क्यों होता है, तो उसके मूल प्रत्यय जिसको कहेंगे तो वो चार है, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है ना, खोटी मान्यता, खोटी मान्यता है ना, गलत, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, क्या रॉन्ग बिलीफ, शरीर मैं हूं है ना, मैं तो क्रोधमान माया को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरे है, मैं काला गोरा हूं, ये क्या है, रॉन्ग बिलीफ है, मैं तो बिना कलर वाला हूँ, मैं तो जीव हूँ, है ना। ये कोई काला है तो काला है, तो जाड़ा है, तो ऐसा है, तो ठिंगना है, ऐसा कहते हैं तो हम दुखी होते हैं। क्यों? ये रॉन्ग बिलीफ के कारण। तो ये है मिथ्यात्व, असंयम, फिर कषाय और योग, ये मूल प्रत्यय कहलाते हैं। शोभा बेन, आपके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये प्रत्यय यानी बंधन के कारण, जिसको हम आश्रय भी कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से बताए? मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये मूल। अभी उसके भेद करेंगे तो मिथ्यात्व पांच प्रकार का है। कौन से पांच है मनी, आपको याद है? इन्होंने कल बताए थे, वो एकांत है, विपरीत है, अज्ञान है, संशय है, और विनय मिथ्यात्व, ये उसके पांच अलग अलग भेद है। असंयम 12 प्रकार का होता है। प्राणी असंयम यानी छह काय जीवों की विराधना होना, वो है प्राणी असंयम। और इंद्रिय असंयम यानी पांच इंद्रिय और मन के संबंध में उसके लोलुपता चलना, उससे वो हटा नहीं अभी तक। तो ये 12 प्रकार हो गए। कषाय के 25 प्रकार है। 16 कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद, ये हो गए कषाय। योग जो है वो 15 प्रकार के, मन के 4, सत्य असत्य उभय और अनुभय, वैसे ही वचन के 4, और काय योग होते हैं 7 प्रकार के, औदारिक औदारिक मिश्र, वैकृक वैकृक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमा, ये सब मिलकर 57 भेद होते हैं। फिर कौन से गुणस्थान में कौन से प्रत्यय है, कौन से नहीं, उसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। जैसे पहले 5 गुणस्थान में आहारक आहारक अंगोपांग वाला यानी उसका योग नहीं होगा, आहारक अंगोपांग नहीं कहना, आहारक मिश्र कहना है, वो योग नहीं पाए जाएंगे। अब ये सब हमने विस्तार से बातें देखी थी। फिर कौन से गति सहित वाला वो बंध है, कौन सी प्रकृति, अभी हमने वो 16 प्रकृतियों की बात हो रही थी, सभी प्रकृतियों की नहीं, थोड़ी थोड़ी लेके फिर बात बताएंगे। तो ये 16 प्रकृतियां कौन से गति सहित बन सकती है, यानी कौन से गति के साथ ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, तो ये हाँ चारों गतियों के साथ बंध होता है। तो ये जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है और अंतरा है, वो तो चारों गतियों के साथ बंधेगी। यशस कीर्ति भी नरक गति बिना 3 गति के साथ बन सकती है ना। और उच्च गोत्र केवल देवगति मनुष्य गति युत वाला होगा बंध। कौन बांधता है उसकी बात नहीं है, कौन बांधता है उसको स्वामित्व में कहेंगे, उन्हें बांधने वाले वो स्वामित्व में चले जाते हैं। यानी स्वामित्व में ऐसा बताते मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि तो चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि वो उसको बांध सकते हैं, स्वामी है उसके। दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान भी चारों गति में पाए जाते हैं और वो इन प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं, वो स्वामी है। पांचवें गुणस्थान में कौन से गति वाले स्वामी है पूछेंगे, कब यही क्योंकि पांचवें गुणस्थान में कौन है वो बात है। छठे से आगे सारे मनुष्य ही है, तो वो उसका बंध करें, ख्याल में आई ना। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देखे थे, अब यहाँ आते हैं। और भी कुछ प्रश्न बाकी है, जो 20, 21, 22, 23 नंबर के प्रश्न बाकी, उसकी चर्चा चलेगी अभी यहाँ 29 पृष्ठ पर, नया पैराग्राफ है ना, वहां से पढ़ेंगे। अब क्या सादिक बंध होता है, क्या अनादिक बंध होता है, क्या ध्रुव बंध होता है, क्या अध्रुव बंध होता है, ये किसकी बात चल रही है? प्रकृति बंध की बात चल रही है, क्योंकि बंध भी अनेक प्रकार का होता है। प्रकृति बंध होता है, स्थिति बंध होता है, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध अलग अलग होते हैं, उसमें ये जो अलग अलग बातें बताएंगे। हमारी प्रकृति संबंधी चाहिए, ये प्रकृतियां अभी उसे 4 शब्द आते हैं। एक शब्द है सादी, स प्लस आदि, यानी एक होता है आदि और एक होता है अनंत। आदि यानी बिगिनिंग सहित, यानी जिसको कभी ना कभी बिगिनिंग है उसको कहेंगे आदि, और उसी को कहेंगे सादी। और जिसको बिगिनिंग नहीं है उसको कहेंगे अनादि से है, यानी पहले नहीं था और फिर चालू हो गया उसको कहेंगे सादी, और पहले से चला ही आ रहा है उसको कहेंगे अनादि। अब यहाँ शांत और अनंत की बात यहाँ नहीं है, वो ध्रुव और अध्रुव रूप से ले लेंगे। ध्रुव बंध का अर्थ क्या है? अनादि से जो बनता आया है और कायम के लिए बनता रहेगा, कब तक? अपनी बंध विच्छित्ति तक, इसको कहते ध्रुव बंध। और अधूरो बंधे ने वो तो उसका बंध विच्छुति करके मोक्ष चला जाएगा। जैसे अभव्य जीवों में ध्रुव बंध होगा और भव्य में अध्रुव बंध होगा, ख्याल में आई बात? अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या फिर प्रश्न है, क्या शादी बंध होता है? देखो ये प्रश्न नंबर 20 था, आपको देख लो आठवें पेज पर मिला क्या आपको? हाँ, क्या अनादि बंध होता है? 21 नंबर का प्रश्न था। क्या ध्रुव बंध होता है? वो 22 नंबर का प्रश्न था। और क्या अध्रुव बंध होता है? अब इस पृच्छा का उत्तर कहते हैं। अभी हमको लगाना है पांच ज्ञानावरण में, एक एक प्रकृति लेते, बाकी सबकी बाद में करेंगे, हम यहाँ बाद में पढ़ेंगे। तो ज्ञानावरण का बंध शादी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है हमको, नहीं हो सकता। अब क्या कहते हैं? हो सकता है। देखो यानी अनादि से तो बंध ही रहा है, अनादि है कि नहीं तब कहेंगे है अनादि, शादी है कि नहीं कहेंगे हाँ शादी भी है। कैसे? उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान में बंध नहीं था, नीचे के गुणस्थानों में आएंगे 10वें में उसका शादी कहेंगे, जो श्रेणी चढ़कर नीचे आया उसको शादी ही कहेंगे। यानी एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है और वो मिथ्या तो में ही जाला जाएगा, मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञानावरण का शादी बंध उसके लिए कहेंगे क्योंकि उसने कभी उपशम श्रेणी चढ़ी थी। ख्याल में ये बात? अभी अनादिकार थे, ये जो ध्रुवबंधी प्रकृति अनादि से बंधी रही है उसको कहेंगे अनादिका। ध्रुवबंध किस में कहेंगे? अभी जो अभव्य जीवों में ज्ञानावरण का बंध ध्रुव रूप से रहेगा और भव्यों में अध्रुव, क्योंकि उसका बंध विच्छेद करके वो मोक्ष चला जाएगा। ख्याल में ही बात? अब इसको 16 प्रकृतियों के बारे में पूछा है, उसकी बात पढ़ेंगे। अभी 14 प्रकृतियों का बंध, ये 14 कौन सी होनी चाहिए? ज्ञानावरण दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5, ये 14 की बात है। हाँ, मिथ्या दृष्टि के साधिक होता है क्योंकि किसके साधिक होगा? उपशम श्रेणी में बंध विच्छेद करके पुनः नीचे उतरकर बंध का प्रारंभ करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीवों के उन प्रकृतियों का साधिक बंध पाया जाता है। ख्याल में मत, मिथ्या तो में आने के बाद उसको बंध शुरू नहीं हुआ है, वैसे नहीं सोचना, उन्होंने कभी उसका बंध का अभाव किया था और उसके लिए वो सादिक कहेंगे। उन प्रकृतियों का अनादि बंध होता है, बाकी सभी जीवों के तो अनादि तो है ही है, सादिक भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है उन्होंने बता दिया कि अनादि बंध होता है क्योंकि उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के बंध आदि के अभाव है, बंध के आदि का अभाव है, बंध की बिगिनिंग नहीं है। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के बंध के आदि का अभाव, वो पढ़ा हमने, उन प्रकृतियों का ध्रुव बंध होता है। अभी ध्रुव किस में होता है वो बताएंगे, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के, मिथ्या दृष्टि में दो है ना, भव्य भी होते हैं अभव्य भी होते हैं, तो भव्य तो मिथ्या तो पार करके वो सम्यक तो प्राप्त करेंगे, श्रेणी चढ़ के मोक्ष भी चले जाएंगे, तो उनके लिए वो कैसा है? अध्रुव कहलाएगा। ध्रुव ने कांस्टेंट हमेशा चलता ही रहेगा, उसको कहेंगे ध्रुव। तो मिथ्या दृष्टि जीवों के उन प्रकृतियों के बंध का कभी विच्छेद नहीं होता, उन प्रकृतियों का अध्रुव बंध होता है। अभी अध्रुव किसके लिए? क्योंकि उपशम और क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के योग्य मिथ्या दृष्टि जीवों का बंध ध्रुव नहीं होता, आगे चलकर वो अभाव करने वाले, इसलिए कहेंगे वो अध्रुव है। मिथ्या तो गुणस्थान में तो ध्रुव वो तो चल ही रहा है, परंतु आगे चलकर वो अभाव करेंगे तो अध्रुव कहेंगे। यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियों का भी, अब मेरा ये प्रश्न है, यह यश कीर्ति और उच्च गोत्र अनादि का बनता है क्या? नहीं बनता, बनता है। देखो कभी यश कीर्ति कभी अयश कीर्ति उलट पुलट कर बंध रहे, उसको अनादि नहीं कह सकते हम, उसको हमेशा सादि ही कहेंगे, क्योंकि यश कीर्ति के पहले प्रतिपक्ष बंध रहा था, उसके पहले यश कीर्ति तो उसके पहले भी था, हाँ पर उसके पहले भी, क्योंकि कोई बिगिनिंग ही नहीं है तो हम उसको अनादि नहीं कह सकते, प्रतिपक्ष प्रकृतियों में अनादि नहीं कह सकते, और हर अंतर्मूर्त में मिथ्या दृष्टि वो तो लौट लौट कर बांध ही रहा है उसको। तो क्या कहते हैं उच्च गोत्र के बारे में भी ऐसा ही है, जैसे साता असाता वगैरह भी ये पूछा नहीं यहाँ पर, जब पूछेंगे उसमें भी ऐसा ही होगा। जो प्रतिपक्षी और मिथ्या दृष्टि को भी बनती वो तो उसमें सादी बंध कहेंगे हम, और अध्रुव ही कहेंगे उसको भी। देखो यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियों का भी मिथ्या दृष्टि के इसी प्रकार ही बंध होता है। विशेष इतना का अर्थ है, डिफरेंस ये है, इन दोनों प्रकृतियों का उसके अनादि और ध्रुव बंध नहीं होता। अनादि से यानी अनादि से यही बनती आई, उसके पहले दूसरी कभी नहीं बनती थी। जैसे ज्ञानावरण कैसे अनादि का बनता है, तो इसमें यह नहीं होगा, क्योंकि इनके प्रतिपक्ष भूत, प्रतिपक्ष यानी उसका अपोनेंट कौन से है, उच्च गोत्र के लिए अपोनेंट कौन है, निज गोत्र, और यश कीर्ति के लिए अयश कीर्ति। हाँ आप पूछो, मेरे पूछो, कोई प्रश्न पूछो, कोई बात नहीं कि हम कैसे पूछे, बोलो। नहीं समझे, देखो ये प्रकृतियों के नाम है, प्रकृति यानी कर्म, प्रकृति का अर्थ क्या, कर्म, प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। मिर्ची कैसी होती है, मिर्च तीखी, वो उसका स्वभाव है, तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति कैसी है, तीखी है। हम किसी को कहते हैं कि इसका गर्म मिजाज है, गर्म मिजाज है ना, जल्दी भड़क जाता है ना, तो इसकी प्रकृति कैसी है, क्रोधी है। किसी को कहते हैं ये लोभी है, बहुत बहुत लोभ करता है, ऐसा आपने सुना होगा ना। ये किसी को कहते बच्चे को बहुत रोता है, ये उसकी ऐसी प्रकृति है, नेचुरल है उसको। तो यहाँ कर्मों के जो हमने बंध देखे थे, यहाँ कर्मों के अलग अलग नाम है। यश कीर्ति ऐसा कर्म है, उसके कारण हमारा यश यानी हमारा क्या कहेंगे, फेम हो जाता है, सब फेमस हो जाते हैं। और उसके उल्टा कि हमारे में अच्छे क्वालिटीज है, फिर भी हम बदनाम हो जाते हैं, इनफेम हो जाते, ऐसा हो जाते हैं। ऐसे वो कर्म के कारण होते हैं, कर्म तो दिखता नहीं है, और हमें क्या लगता है, नहीं इसने मेरी निंदा की इसलिए मेरा इनफेम हो गया, कि इसके कारण मैं फेमस हो जाऊंगा, ये पैसे के कारण मैं महान कहलाऊंगा, ये तो हम ये रॉन्ग बिलीफ चालू हो जाता है। ये सारे कर्मों के अलग अलग नाम है और उनका कार्य भी अलग अलग है, फिर भी वो कर्मों का कार्य है वो भी जिसको फॉर द सेक ऑफ कहने के लिए है। वैसे तो जीव ही स्वयं उसकी अपनी योग्यता से वैसा परिणमता है, ये पहले नक्की करना। पूछना कभी कोई आपको बहुत पूछने का, और मम्मी से नहीं पूछना, हमसे पूछना। हाँ देखो अभी क्या कहते हैं, उसके अपोनेंट का जो है, जो यश कीर्ति का अगेंस्ट क्या है, अयश कीर्ति। तो वो तो हर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में कुछ सेकंडों में उलट पुलट कर बंद होता रहता है, मिथ्या दृष्टि को दोनों का ही बंध होता है। जब तक अयश कीर्ति का उदय बंध विच्छित नहीं होगी, वो कहाँ तक होती है बंध विच्छित, छठे में, छठे तक बनता है, तब तक क्या होगा, वो तो दोनों उलट पुलट कर बंधेगी। हमने वो सांतर निरंतर की बात देखी थी ना, हाँ पहले सांतर निरंतर था और बाद में तो पहले सांतर था बाद में निरंतर हो गया। यहाँ नीचे की तीसरी लाइन में, इनकी प्रतिपक्ष भूत अयश कीर्ति और निज गोत्र का बंध संभव है। हमने प्रतिपक्षी प्रकृतियां देखी थी, कितने देखी थी मालूम है, 51 देखी ना, 51 नाम कर्म की 51 और बाकी 11 थी, 62 टोटल थी। तो उनमें सब में ऐसा लागू हो सकता है, तो उनमें वो साधी और अध्रुव कहेंगे हम। शेष सब गुणस्थानों में 14 ध्रुव प्रकृतियां सादि अनादि और अध्रुव, ये ध्रुव प्रकृति और उसको अध्रुव कहते हैं। ध्रुव प्रकृतियां ने ध्रुवबंदी प्रकृतियां है, तो ध्रुवबंदी, परंतु शेष सब गुणस्थान में, पहले गुणस्थानों में तो चारों प्रकार बताए, सादि अनादि ध्रुव अध्रुव, अब शेष सब गुणस्थानों में वो ध्रुव कहलाएगी कि अध्रुव कहलाएगी, सादि अनादि बाद में देखते हैं। अन्य सभी गुणस्थान यानी दूसरा तीसरा चौथा, उसका अर्थ है कहीं कभी ना कभी सम्यक तो प्राप्त करके वो दूसरे तीसरे वगैरह में आ गया है, यानी वो भव्य है, ये नक्की है भव्य है, तो ये अध्रुव होगी। ध्रुवबंदी जो ज्ञानावरण आदि अनादि से चली आ रही है वो भी कैसी है, अभी अध्रुव हो जाती है, यानी वो ध्रुव वाला भंग उसमें नहीं रहेगा। तो शेष सभी गुणस्थानों में ये जो 14 प्रकृति, अभी यहाँ 16 में से 14 की बात कर रहे हैं, ये जो ध्रुव प्रकृतियां है वो सादी, सादी भी क्यों, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ है तो सादी कहलाएगा, अनादि और अध्रुव, इन तीन विकल्पों से बनती है, यानी तीन विकल्प, तीनों ही टाइप उसमें हो सकती है, क्योंकि दूसरा चौथा गुण स्थान है। अभी मिथ्या तो क्या अभी अभी चौथे में आया है, तो उसके लिए वो अनादि बंध है, परंतु जिसने उपशम श्रेणी उतर के चौथे में आए उसके लिए वो सादी बंध है। अध्रुव तो सब में हुए क्योंकि अभी वो निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाला ही है, एक बार वो रॉन्ग बिलीफ गया राइट बिलीफ आ गया तो नियम से वो मोक्ष चला जाएगा। हाँ, दूसरे से सारे अध्रुव क्योंकि वो भव्य है, नक्की हो गया है। पहले गुणस्थान में भी भव्य पाए जाते हैं, उनकी अपेक्षा ध्रुव कहा था और अभव्यों की अपेक्षा अध्रुव कहा था, पर अभी ये सारे भव्य तो नक्की हो गया इसलिए उनमें अध्रुव ही भंग चलेगा। हाल में ना क्यों किसको कैसे और क्यों कहना, यानी शादी के साथ अनादि ये दो है और ध्रुव और अध्रुव ये दो है, ये जोड़ी उसकी कंपेयर करना हमको। वहां इन यहाँ दो लिखा है पर चौदह लिखो, वहां इन चौदह प्रकृतियों का ध्रुव भंग नहीं है। ये दो क्यों लिखा उसमें, हमने ठीक किया है दो जगह इस लाइन में, लास्ट लाइन में दो प्रकृतियों के बदले चौदह प्रकृतियों का ध्रुव भंग नहीं है, क्योंकि उन भव्य जीवों के वो सारे भव्य ही है। इन चौदह प्रकृतियों का, चौदह करो उसको, दो जगह दो को निकाल कर चौदह लिखो, आप में क्या है बराबर है क्या? हाँ हाँ, ऊपर लिखा है ना ध्रुव भंगो नत्थी, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि चौदह के बारे में बता रहे थे कि उसमें सादी है अनादि और अध्रुव है और उनमें ध्रुव भंग नहीं है, क्योंकि ये चौदह प्रकृतियों का नियम से अभी आना पेज नंबर 30 पर, बंध विच्छेद संभव है यानी होने ही वाला है, क्योंकि आगे चलकर वो मुख जाने वाले, एक बार सम्यक तो हुआ है। परंतु यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियों का बंध सर्व गुण स्थानों में सादी और अध्रुव ही होता है, ही कहा। आप कहेंगे ऊपर के गुण स्थानों में जहाँ निज गोत्र का तो बंध विच्छेद हो गया तो आगे तो वो ध्रुव होगा कि नहीं, नहीं उसको सादी कहेंगे कि अनादि कहेंगे, सादी ही कहेंगे, क्योंकि पहले 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 वो तो उसकी अपोजिट प्रतिपक्ष बनती थी, इसलिए उसको सादी और अध्रुव ही कहेंगे, क्योंकि वो तो मिट नहीं वाला है, वैसे भी अध्रुव ही होता है, वो प्रतिपक्ष वाले सादी और अध्रुव ही हो गए। अब यहां से नया सूत्र हम पढ़ेंगे सात नंबर का, पांच और छह सूत्रों में इतनी बात होगी, वहां दसवें गुणस्थान में बंध विच्छेद होने वाले सोलह प्रकृतियों के बारे में हमने तेईस प्रश्नों संबंधी वहां पोह किया। अब यहाँ नया सूत्र है, अब इस पूरा हो गया, वो सोलह के बारे में तेईस के प्रश्न पूरे हो गए। हाँ, अब यहाँ हम लिस्ट पढ़ेंगे, ये जो सीनियर लोग पुराने लोग कुछ बोलेंगे नहीं, हम आपको पूछेंगे मनीषा बहन, ये पहले लिस्ट पढ़ेंगे तो लिस्ट पढ़ के आपको कुछ स्ट्राइक होता है क्या, ये हम आपको पूछेंगे। देखो पहले लिस्ट पढ़ते हैं, प्राकृत में पहले पढ़ेंगे, निद्दा निद्दा पहला पहला थीन गिद्धि अनंतानुबंधी कोह माण माया लोभ इथिवेद तिरिखाऊ तिरिख गई चौ संठान चौ संघन तिरिख गई पाउगान पूवी उज्जोव अपसत्थ विहाय गई दुभग दुस्सर अनादेज्य नीचा गोदानम को बंधो को बंधो। अभी हिंदी पढ़ेंगे तो आपका और ख्याल आ जाएगा। देखो, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्रीवेद तिर्यक आयु तिर्यक गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र। इन प्रकृतियों का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, मनीषा बेन अभी आपको बताना है। ये सारी जो लिस्ट हमने इकट्ठी अलग अलग प्रकृतियों का एक जगह लिया, तो इसको ये लिस्ट सुनकर आपको कुछ ख्याल आता है, ये सारी प्रकृतियां इकट्ठी किस कौन से गुणस्थान में बंध विच्छित होती है? अब दूसरे में उसका उदय भी बंध भी दूसरे में है और उसी के साथ ये सारी प्रकृतियों की बंध विच्छित होती है। हमने दूसरे गुण स्थान के बंद, वो 16 और ये 25 है, है ना, ये दूसरे गुण स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, हम ये तीन हो जाए बंद बंद विच्छित्ति, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, ये 25 प्रकृतियां ये दूसरे गुणस्थान के बंद विच्छित्ति है। पहले जो 23 प्रश्न पूछे थे वो 16 प्रकृतियां कौन सी थी, 10वें गुणस्थान में बंद विच्छित्ति होने वाली। अब ये सारे 25 प्रकृतियां कहाँ बंद विच्छित्ति होती है, दूसरे गुणस्थान। हमने कैसे याद किया था, हमने पहले अनंतानुबंधी चार कहे थे, फिर स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला कहते थे, फिर चार संस्थान चार सहनन को कहते थे, फिर तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी तिरंजायु उद्योत कहते थे, फिर दुर्भग दुस्वर अनादेय निज गोत्र स्त्रीवेद और अप्रशस्त विहाय गति, इस तरह से हमने उस ऑर्डर में याद किया था। है तो वही की वही प्रकृति। तो ये 25 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या है, वो पहले और दूसरे गुणस्थान में बनती है, उसके बंधक कौन है और अबंधक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसमें सारे ही प्रश्न पूछे जाएंगे 23 के 23। अब उसकी लिस्ट देखते हम, डायरेक्ट दूसरे कुछ नहीं है, प्रकृति अलग अलग लेना है बस, ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल में आई बात, आगे बढ़ते देखो। यह पृच्छा सूत्र है, क्वेश्चन पृच्छा सूत्र होकर देशामर्शक है, देशामर्शक है पार्शल, उसमें कथन आता है, पार्शल ही बताया, अभी वो खोलकर उसका स्पष्टीकरण करेंगे। अतएव क्या मिथ्या दृष्टिबंधक है, क्या सासाधन समय दृष्टिबंधक है, अभी 14 गुणस्थानों के नाम पूछेंगे, यानी कौन बंधक है पूछ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि और सासाधन बंधक हो गए, बाकी सारे अबंधक हो गए, है ना। पहले प्रश्न आपको प्रश्न का खोलकर बता रहे स्पष्टीकरण, प्रश्न का स्पष्टीकरण, उत्तर तो बाद में देंगे। क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है, इस प्रकार जाकर यानी हर एक गुणस्थान का नाम ले लो, आप गुणस्थानों के नाम बताएंगे, चौथे का नाम असंयत सम्यक दृष्टि, केवल असंयम कहेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों गुणस्थान उसमें आ जाएंगे, असंयत सम्यक दृष्टि। हाँ, पांचवे का नाम, हाँ संयता संयत या देश विरोध भी कहते हो, हाँ छठे का नाम प्रमत्त संयत, हाँ सातवें का अप्रमत्त संयत, यहाँ तो संयत संयत लगाओ, आठवें का अपूर्वकरण, नवे का अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म सांप्राय, ग्यारहवें उपशांत कषाय और बारहवा क्षीण कषाय या क्षीण मोह, दोनों ही नाम आते हैं, उपशांत मोह क्षीण मोह कहो या उपशांत कषाय क्षीण कषाय, कोई की बात है। तेरहवें का नाम संयोग केवली और चौदहवें अयोग केवली, यानी सबके प्रश्न पूछना है ये कहते हैं। और कहते क्या सिद्ध बंधक है, क्या इन कर्मों का बंध पूर्व में विच्छिन्न होता है, क्या उदय पूर्व में विच्छिन्न होता है, अभी अलग अलग प्रकृतियां लेकर सबकी बात अलग अलग करनी पड़ेगी, ख्याल में है ना। क्या दोनों साथ ही विच्छिन्न होते हैं, जैसे अनंतानुबंधी दोनों साथ में विच्छिन्न हो रहे हैं, अभी स्थान वृद्धि वगैरह अभी बंध अभी रुक गया, उसका उदय कहाँ तक चलेगा, अब इसके लिए उदय विच्छित्ति बंध विच्छित्ति सब आपको याद रखना है। हाँ, छठे गुणस्थान का उदय है, ये सब हम इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं। ये प्रकृतियां क्या स्वोदय से बनती है, क्या परोदय से बनती है, क्या स्वोदय परोदय से बनती है ना, इसमें कितने प्रतिपक्ष वाली है तो स्वोदय परोदय से बंधेगी, अभी वो कौन कौन सी, वो हम हर एक प्रकृति का ग्रुप अलग अलग बना के देखेंगे। क्या सांतर बनती है, क्या निरंतर बनती है, क्या सांतर निरंतर बनती है, यानी जो प्रकृतियां नीचे उसकी बंध विच्छित्ति होकर ऊपर के गुणस्थानों में बनती रहती है उसको वो सांतर निरंतर कहेंगे, और जो अभी कुछ प्रतिपक्ष वाली है वो तो सांतर भी होती है। क्या प्रत्ययों से बनती है, क्या बिना प्रत्ययों से बनती है, देखो कोई भी बंध प्रत्यय के बिना होता ही नहीं, पहले ये नक्की लो, फिर भी इसमें प्रत्ययों को कहेंगे, फिर कौन से गुणस्थान पे बनती है, तो पहले गुणस्थान में प्रत्यय कौन से और दूसरे में कौन से, वो उसकी चर्चा यहाँ आएगी। हमने देखा था पहले में मिथ्या तो सेठ, वो 55 में से कितने थे वहां पर, 53 थे, 57 में से 55 थे, सॉरी हाँ 55 थे, 57 में से दो नहीं थे, आहारक आहारक मिश्र नहीं थे, फिर दूसरे गुणस्थान में वो मिथ्यात्व वाले भी नहीं थे, तो 50 थे। क्या शांत निरंतर बनती है, ये हो गया। क्या प्रत्ययों से बनती है, क्या बिना प्रत्ययों से बनती है, तो उसमें कौन से प्रत्यय उसकी भी चर्चा आ जाएगी। क्या गति संयुक्त बनती है या अगति संयुक्त बनती है। अब देखो ये प्रकृतियां कैसी है, दूसरे गुण स्थान तक ही है तो गति सहित ही बन देगी। जो प्रकृति वो दसवें तक बनती थी वो गति के बिना भी बनती थी, गति संयुक्त भी यानी गति से असंयुक्त भी बनती थी, क्योंकि गति आठवें तक बनती है और वो प्रक्रिया नौवे दसवें तक बन सकती थी, इसलिए उसको पहले लिया। आपका प्रश्न है ना, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे, इसलिए ये कैसी प्रकृतियां गति सहित ही बंधेगी पहले दो गुण स्थानों में। इन कर्मों के बंधक के स्वामी किन गतियों वाले होते हैं, यानी कौन से गतियों वाले इनका बंध करते हैं, उसका अर्थ ये गुणस्थान कौन कौन से गतियों में होते हैं, ऐसा उल्टा भी आता है। और किन गतियों वालों नहीं होते हैं, बंद अध्वान कितने, अध्वान का अर्थ क्या देखा था, सीमा कहाँ से कहाँ तक, ये पहले से दूसरे तक इनको कहेंगे हम। क्या चरम समय में बंध विच्छिन्न होता है, क्या प्रथम समय में बंध विच्छिन्न होता है, या अप्रथम अचरम यानी इन बिटवीन समय में बंध विच्छिन्न होता है, तो बताएंगे अभी आगे के सूत्र के उत्तर में सब आएगा कि अंतिम समय दूसरे गुणस्थान के अंतिम समय तक बंध है करके। क्या इन प्रकृतियों का सादिक बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है, क्या अध्रुव बंध है। अब मेरा एक प्रश्न है, अभी हमारा सादि अनादि का विषय हुआ था ना, इसलिए इनके उत्तर आने वाले हैं। अब ये लिस्ट देखो आप, उसमें अनादि के बंध वाले कौन से वो मुझे बताना। अनादि का पूछ, अनादि का मैंने पूछा, अनादि बंध कौन कौन सा है, निज गोत्र क्या, उससे पहले कभी उच्च गोत्र नहीं बांधा था। आप जरा शांति रखो, इन लोगों को जरा विचार करने दो। हाँ हो सकता है ना, हाँ होता है, क्योंकि बाद में वो तो हाँ, तो उसका अर्थ क्या है, अनंतानुबंधी का तो अनादि तो है ही है, अनादि का कौन सा है मैं पूछा था, सादी है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। इन प्रकृतियों में अनादि वाली कौन सी है, खाली अनंतानुबंधी, हाँ निद्रा, निद्रा वो भी स्थान वृद्धि निद्रा, निद्रा क्योंकि नव दर्शनावरण अनादि से बनती है। तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां इसमें कौन सी है ये आपको लेना है, जो ध्रुवबंधी होती वो अनादि से बनती है, तो बाकी जो है वो कैसी है, प्रतिपक्ष वाली है, तो प्रतिपक्ष में अनादि बंधन नहीं होगा, प्रतिपक्ष में सादी और अध्रुव कहेंगे, और ये अनंतानुबंधी वगैरह जो है ना वो भी सादी होगा, क्योंकि जो सम्यक में से फिर नीचे गिरकर आ गए हैं उनके लिए सादी है ना वो। हाँ अभी वो दसवें वाले की क्या था, उसको उपशम श्रेणी चढ़ के उतारना था तब वो सादी होती थी, अब ये तो अनंतानुबंधी और ये स्थान वृद्धि वगैरह तो सम्यक तो प्राप्त किया चौथे में जाके नीचे आया तो उसके लिए सादी हो गई। ख्याल में कैसे विचार करना है, यहाँ हम सब पढ़ने जा रहे पहले हम अभी तो हमने तो उन्होंने बहुत सारी चर्चा की है, तो हमें भी डिराइव करने को आना चाहिए, केवल पढ़ के उसका उत्तर नहीं जान लेना है, हम अपने बुद्धि से उसका भले गलत भी हो जाए कोई बात नहीं है। एक बार बंध रुक जाए और फिर बंध शुरू हो जाए, ये यहाँ पर भी दूसरे गुणस्थान में कौन आता है, जो चौथे में जाकर आता है वही दूसरे में आता है, ख्याल में आई ना। अब इन्हीं प्रकृतियों को पहले गुणस्थान में सादी भी कह सकेंगे, अनादि भी कह सकेंगे, और ध्रुव अध्रुव भी कह सकेंगे, परंतु अभी ये कैसी प्रकृति है, दूसरे गुणस्थान वाले तो भव्य ही है, उसके लिए अध्रुव ही कहेंगे सब सब। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न का जवाब आने वाला है। इन प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए अगला सूत्र कहते, ये डायरेक्ट अगला सूत्र आया, पहली बार तो उनको सब समझाना पड़ा था कि प्रश्न क्या है, उदय विच्छित्ति क्या होती है, स्वोदय परोदय क्या है, वो सब उन्होंने चर्चा की है, अभी हमको डायरेक्ट उत्तर ढूंढने हैं, तो उसका उत्तर बता रहे यहाँ पर, ऊपर पढ़ेंगे प्राकृत में। मिच्छा इट्ठी शासन सम्माइट्ठे, वो शासन हुआ है, वो शासन करना ब्रह्मा प्राकृत में, शासन प्राकृत में शासन कहते, शासन सम्माइट्ठी बंधा, बंधा यानी बंधक होते हैं। कौन से हैं? पहले और दूसरे गुणस्थान वाले बंधक है। एदे बंधा अवशेषा अबंधा, नीचे उसका अर्थ, पूर्वोक्त प्रकृतियों के, अभी बस इन्हीं 25 प्रकृतियों की बात चली गई, मिथ्या दृष्टि और शासादन समय दृष्टि जीव बंधक है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंधक ऊपर के किसी गुणस्थानों में नहीं होता, ऊपर के गुणस्थान, शेष में ऊपर, क्योंकि पहला और दूसरे गुणस्थान के बंधक है बता दिया, अब शेष में ऊपर के सारे। और ये हम गुणस्थानों में इन जनरल बता रहे, मार्गणा की बात नहीं है, सातवें नरक की बात पूछेंगे तो उनके तो वो तिर्यंच गति वगैरह वही बंधेगी, बाकी तो बंधेगी, उनके लिए तो पहला ही गुणस्थान वाला बंधेगा। अब उसका अर्थ देखते हैं, यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि इसमें से बहुत थोड़ी बात बताई, उसमें से सब सारा विस्तार करके खोल के बताएंगे, क्योंकि बंध के स्वामित्व और अध्वान की प्ररूपना द्वारा वह पृच्छा सूत्र में उद्दिष्ट सब अर्थों का निरूपण करता है। इस वाक्य का अर्थ देखते, देखो ये सूत्र कैसा है, देशामर्शक है, यानी पार्शली बताया है, परंतु उसमें सारे ही 23 प्रश्नों के उत्तर गर्भित है, ये कहना चाहते हैं। उसमें क्या क्या बताया, स्वामित्व और अध्वान बताया, स्वामित्व ने कौन से गुणस्थान वाले बंधक है वो बताया, और कहां से कहां तक पहले से दूसरे तक के जीव बंधक है ये भी बता दिया, परंतु उसमें सभी अर्थ निरूपण हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं वो बताएंगे। बंध स्वामित्व और अध्वान चूंकि सूत्र से ही जाना जाता है, क्योंकि सूत्र में वो गुणस्थानों के नाम बता दिए हैं, अतः इन दोनों का अर्थ यहां नहीं कहा जाता, इसलिए फिर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या इनका बंध पहले विच्छिन्न होता है या उदय पहले विच्छिन्न होता है, इसका अर्थ कहते हैं। अब इसमें से पूरा ग्रुप एक साथ नहीं देंगे, जिसकी जिसकी जहां अप्लाई होता है, कौन से बंध पहले विच्छिन्न होते उसकी बात करेंगे। स्त्यान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों का, यानी स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पूर्व में नहीं यहां पर, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय का विच्छिन्न होता है, क्योंकि शासादन समय दृष्टि के चरम समय में बंध के नष्ट होने पर, पश्चात ऊपर जाकर, यानी दूसरे में से ऊपर जाता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, दूसरे तक उसका बंध है, जब वो तीसरे चौथे आदि गुणस्थान है जब कभी जाएगा, ऊपर जाकर प्रमत्त संयत में इनके उदय का विच्छेद पाया जाता है। इनका उदय कहाँ तक है, तो छठे गुणस्थान तक है। अब उसके बाद अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी चतुष्टय का बंध और उदय दोनों साथ नष्ट होते हैं, क्योंकि उसकी उदय विच्छित्ति भी दूसरे में है, बंध विच्छित्ति भी दूसरे में है, क्योंकि शासासन सम्यक दृष्टि के चरम समय में इनके बंध और उदय का एक साथ विच्छेद देखा जाता है। उसके बाद स्त्रीवेद प्रकृति है, स्त्रीवेद का पूर्व में बंध पश्चात उदय विच्छिन्न होता है, ब्रह्मा आपको बताना है, मैं जिसको पूछेंगे उसे वही बताएगा बंध कहाँ विच्छित्ति होती है और उदय की कहाँ पर। स्त्रीवेद अपने मन में अपना उत्तर तैयार रखो, बंध विच्छित्ति तो बताइए यहाँ पर, दूसरे में उदय, नौवे गुणस्थान के पहले भाग तक, हाँ क्योंकि सवेद भाग है ना, तीनों वेदों का उदय होता है वहां तक, तो बंध विच्छित्ति है दूसरे में और उदय विच्छित्ति नौवे के पहले भाग में। देखो, क्योंकि नीचे से दूसरी लाइन में आते भी, शासादन गुणस्थान में बंध के विच्छिन्न होने पर तत्पश्चात ऊपर जाकर अनिवृत्तकरण गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है, अनिवृत्तिकरण में भी पहले भाग के अंत तक, ये उसके विस्तार नहीं केवल हमको मालूम है, पहले भाग में उदय विच्छित्ति होती है। इसी प्रकार तिर्यक आयु, तिर्यक गत्या प्रायज्ञानपूर्वी उद्योत और नीच गोत्र, अभी पेज पलटने के पहले देखते हैं। तिर्यक आयु की बंध विच्छित्ति कहाँ है और उदय विच्छित्ति कहाँ है? हाँ आप बताओ, बंध विच्छित्ति सेकंड में, क्योंकि यहाँ बताइए ना। हाँ, ये सारी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति तो सेकंड में, आपको उदय विच्छित्ति देखनी है। तिर्यक आयु की, हाँ, पांचवें गुणस्थान तक तिर्यक जीव है। अब तिर्यक गति की भी बात भी ऐसे ही है, बंध विच्छित्ति दूसरे में, उदय विच्छित्ति पांचवे में, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, हाँ, उदय विच्छित्ति चौथे में। हाँ, इसलिए हाँ उद्योत की, हाँ बंद तो यहाँ से है और पांचवे तक उसका उदय है। नीच गोत्र भी पांचवे तक उसका उदय है, पांचवे में उदय विच्छित्ति होती है। प्रकृतियों का भी 32 पेज पर आते हैं। पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय का विच्छेद होता है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में बंध का विच्छित हो जाने पर ऊपर जाकर संयता संयत गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है, विच्छित्ति होती है। तथा तिर्यक प्राज्ञान पूर्वी के उदय का विच्छेद असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में पाया जाता है, क्योंकि अनुपूर्वी तो विग्रह गति में ही हो सकती है, तो चौथा गुणस्थान। इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानों का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है। देखो देखो, अभी हम पढ़ने के पहले मध्य के चार संस्थान यहाँ जो बंध विच्छित्ति होती है, तो उसका उदय कहाँ तक चलेगा? तेरहवे तक, बहुत अच्छा। तेरहवे तक छह संस्थानों का उदय है। अभी चार सहनन का यहाँ बंध विच्छित्ति होती है, तो उदय विच्छित्ति बताए अश्विन भाई। चार सहनन, बीच वाले चार सहनन, हाँ अब क्या कहते हैं? हाँ वर्जन आराज और नाराज ग्यारहवे में, हाँ क्योंकि बाकी तो, हाँ वो संप्राप्त तो पहले में ही था उसका, हाँ सहनन। संस्थान तेरहवे तक है, हाँ और सहन उदय, उदय हाँ बंध तो यहीं पर है सारे। हाँ ये सारी प्रकृतियां दूसरे में बंध विच्छित्ति वाली है। हर एक का उदय अलग अलग गुणस्थान तक चलेगा, तो चारों संस्थानों का उदय तो तेरहवे तक चलेगा। और सहनन में यहाँ जो बंध विच्छित्ति वाले चार, बीच वाले चार की बात है, इन चार में से जो पहले दो लेते हैं तो उसमें से, हाँ वज्रनाराज नाराज ग्यारहवे में उसकी उदय विच्छित्ति, यानी वहां तक है वो। हाँ अर्धनाराज और कीली सातवें तक है, यहाँ पढ़ेंगे अभी। हाँ हाँ वो भी, परंतु उसके तो हमने देखी तो पहले में ही हुई थी, इसलिए वह उसकी चर्चा अभी पूछा नहीं है प्रश्न उन्होंने। देखो क्या, इसी प्रकार चौथी लाइन पढ़ती हूँ फिर। मध्यम चार संस्थानों का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय का विच्छित होता है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में बंध के रुक जाने पर ऊपर जाकर संयोग केवली गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है, यानी वहाँ छह संस्थान पाए जाते हैं अन्य अन्य जीवों के अलग अलग। इसी प्रकार ही मध्यम चार सहनन है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में इनके बंध के रुक जाने पर ऊपर अप्रमत्त संयत, वहाँ अर्धनाराज और किलित लेना, और उपशांत कषाय वज्रनाराज और नाराज लेना, गुणस्थानों में क्रम से दो दो सहननों का उदय क्षय देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्त विहार गति का भी कथन करना चाहिए। ये अप्रशस्त विहार गति कहाँ तक उदय है? तेरहवे तक, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में बंध के रुक जाने पर ऊपर संयोग केवली में उदय का विच्छेद होता है। इसी प्रकार दुर्भग और अनादेय का कथन करना चाहिए। लक्ष्मी जी कहाँ उसका उदय विच्छित्ति है? चौथे में, दुर्भग अनादेय और अयशस्कीर्ति हम देखते थे ना, वो 17 में गिने थे हमने उसको, ऊपर जाकर असंयत समय दृष्टि में लिखा है ना यहाँ पर। इसी प्रकार दुस्वर का भी कहना चाहिए। दुस्वर कहाँ तक चलती है? संयोग क्यों लिखा है? क्योंकि सासाधन में बंद के रूप जाने पर संयोग केवली में उदय का विच्छेद होता है। स्वर यानी स्पीच, उसकी आवाज। देखो तीर्थंकरों के तो सुस्वर का ही उदय है, पर अन्य केवली को दुस्वर का भी हो सकता है। सामान्य केवली में ले लेते हैं, इसलिए सुस्वर दुस्वर दोनों ही लिए। एक जीव को कोई एक रहेगा। हाँ तो क्या हुए? तो छह संस्थान भी रहते हैं ना। शरीर से क्या मतलब? वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? तो काला होगा शरीर, वर्ण से काला होगा उसको। अभी संस्थान जाने दो, काले कोई जीव है उसको होगा कि नहीं केवल ज्ञान? होगा। और कोई ठिंगना है क्या? हाइट वाले कोई होगा? गोरा हाइट वाला और सुंदर होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है। तीर्थंकर में वो सारे, क्योंकि वो तो तीर्थंकर जो है वो तो विशेष पुण्य के उदय वाले। उसके कलर की बात नहीं है। हरी हरी कलर। हाँ उनकी तो मूर्ति तो काली अच्छी लगती है। श्यामल लेते लिखते हरे रंग का कहने में आता है उसको। अभी हरे नहीं, इसे वनस्पति जैसा ग्रीन कलर नहीं होगा। वो जैसे तिंज रही आती है वैसे। हाँ उनके उदय है ध्वनि, तो ध्वनि निकलेगी तो ओंकार रूप से ही निकलेगी। उसमें नहीं होगी वो, मुख केवली होगी उनके। तो नाम कर्म का उदय तो बोलना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। दुस्वर चला आ गया तो ऐसा रहेगा, यानी बोलेंगे तो ही उदय कहेंगे, ऐसा नहीं है उसका। जैसे कौवे को कहेंगे दुस्वर का उदय है और वो तो चुप बैठा है, उदय तो कहलाएगा उसको। हाँ अभी ये हो गए यहाँ पर दुस्वर की बात। सेवक केवली में उदय विच्छेद होता है। अब आगे के प्रश्न, पूर्वोक्त प्रकृतियां क्या स्वोदय से क्या परोदय से या क्या स्वपरो उदय उभय रूप से बनती है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। वही इस प्रकार है, स्त्यान वृद्धि त्रय। देखो जिनके उदय आगे तक चलते हैं वो स्वोदय में बनती है, और उसमें भी वो ध्रुवबंदी भी होनी चाहिए, ये भी है उसमें। स्त्री वेद तीर्य गायो तीर्य गति, ओहो नहीं उदय की बात है, स्वोदय पुरोदय दोनों लिया। दोनों की बात है ये। स्त्यान वृद्धि त्रय, स्त्री वेद, तीर्यक आयु, तीर्यक गति, चार संस्थान चार सहनन, तीर्यक गति प्राज्ञान पूर्वी, उद्योत अप्रशस्त विहाय गति, अनंतानुबंधी चतुष्क, दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों की मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि स्वोदय से भी और परोदय से भी बांधते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं। देखो इसमें अर्थ ऐसा लगाना, बाकी तो प्रतिपक्ष समझ में आती है। आप पूछेंगे स्त्यान वृद्धि का उदय तो कहाँ तक है? ये त्रिका छठे तक, तो वो परोदय में कैसी बनती है उसका अर्थ बताओ। देखो इनका उदय यानी जैसे ये ध्रुवबंदी है ना नौ के नौ, ऐसे उदय एट ए टाइम सबका नहीं होता है। देखो देखो उदय किसका, उदय नियम से किसका होगा? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इनका उदय नियम से है। सब चारों है, चारों का है, पर पांचों निद्रा में से एक का भी उदय नहीं ये हो सकता है जागृत अवस्था में, तो उसको परोदय कहेंगे। या हो सकता है कि स्त्यान वृद्धि का उदय हो तो अन्य दो का नहीं है, या केवल निद्रा का प्रचला का उदय चल रहा है, किसी एक उदय, एक निद्रा का एट अ टाइम उदय होगा, तो उसके उदय में मिथ्या दृष्टि और साधन समय दृष्टि इन तीनों को बांध रहे, ज्ञान बुद्धि आदि तीनों बंद, नौ के नौ दर्शनावरण बंद रहे, उसका अर्थ क्या है? वो पर के उदय में भी बंद रही है। अब अनंतानुबंधी की बात करेंगे, आप कहेंगे तो सोदय से ही बंधेगी ना, परोदय में कैसे कहते? तो अनंतानुबंधी का एक एक कषाय अलग निकालो। अनंतानुबंधी का क्रोध, क्या अनंतानुबंधी लोभ मायन माया उसके मान माया लोभ के उदय में बनता है कि नहीं बनता? तो बनता है, हमने देखा कषाय एक चलता है और बंद चारों होते हैं, यानी क्रोध करे भी तो भी चारों का बंद, लोभ करे तो भी चारों का बंद, यानी वो क्रोध के उदय में भी क्रोध बनता है। यहाँ अनंतानुबंधी की बात चल रही है ना, यहाँ अनंतानुबंधी की बात चल रही, 16 का बंद होता है, हम उसकी चर्चा नहीं अपनी। क्रोध के उदय में मान माया लोभ बनते हैं कि नहीं बनते? यानी क्रोध के उदय में क्रोध भी बंधेगा और क्रोध के उदय में मान माया लोभ भी बंधेगा। अब यहाँ अनंत अनुबंधी प्रकटित करो, ख्याल में ना क्या कहना, इसको परोदय यानी स्वपरोदय क्यों कहा, इस पे चर्चा है, क्योंकि हम स्वपरोदय केवल वो प्रतिपक्ष में लगाते हैं, ये तो एक का उदय हो तो सभी बनती है, और वो निद्रा वगैरह के बारे में, निद्रा पांच निद्रा होकर भी एट ए टाइम एक ही निद्रा का उदय होता है, और जब जागृत अवस्था है तो पांचों में एक का भी उदय नहीं है। दर्शनावरण में ये रूल है कि मैं उसका चार का उदय चलेगा, अभी हम नीचे के उन स्थानों में देख रहे हैं, चार का उदय होगा या पांच का उदय होगा, जागृत अवस्था में चार का उदय, और जब वो सो रहा है तो पांच का उदय, वो पांच में से कोई एक निद्रा का उदय रहते हैं एट ए टाइम, सभी एट ए टाइम नहीं होते, बनते एट ए टाइम है, चारों के नौ का बंद हो रहे हैं पहले दो गुण स्थानों में, ध्रुव बंदी है ना वो,
उदय एक का ही है
तो भी सब बंद रहे, यानी अभी जागृत है, मिथ्या दृष्टि है, जागृत है, स्वाध्याय कर रहा है, तो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला और वो चार सब बंद रहे, ख्याल में आई ना बात, बंदर उदय का ये थोड़ा रूल समझ में लो, इसीलिए कहते पर के उदय में भी बंद रही है, उसका अर्थ ही ये है, नहीं तो हमें लगता है नौ के नौ बांध रहे, और निद्रा में निद्रित में भी एट ए टाइम कोई एक ही निद्रा का उदय, वो अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में पलटता है, हम तो क्या बोलते हैं, अरे हम निद्रा में रहना अच्छा नहीं, नौ बनते हैं, उदय एक का है, अरे अरे उदय एक का है, बंद सबका है, मैं वही तो कह रही हूँ, बंद है एट ए टाइम सबका है, बंद सबका है, उदय एक का है, और आप कहोगे तो हम 7-8 घंटे अच्छे सोए है ना, अच्छी नींद लगी, अभी छुट्टियां चल रही है, उसमें भी जो वो निद्रा है ना, निद्रा से प्रचला, प्रचला से निद्रा, निद्रा प्रचला प्रचला, कभी स्थान वृद्धि, अलग अलग होते हैं ना, कभी देखो हम सोते अभी तो ऐसे थोड़े सोते हैं जागते हैं ऐसा होता है, कभी कभी जरा डीप स्लीप हो जाती है ये भी होता है ना, कभी नींद में हाथ पैर हिल भी जाते हैं, कभी लाल भी बहती है, और कोई नींद में चलकर उठकर कुछ करके भी आते हैं ऐसा है ना, उसको कहते हैं स्थान वृद्धि वाला हमारे बाजू में आपके थोड़ा बड़े उम्र का लड़का है, रात को बेल दबाई हमारी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और वो नीचे कहीं जाके आया, क्योंकि उसने तो सीसीटीवी लगाया है, तो बाद में उन्होंने चेक किया तो उनको पता है चलो वो पहले ही नीचे जाकर कहीं आया था, और फिर हमारी बेल भी फिर क्या कुछ पैसा प्रश्न पूछा इनके साथ, तो फिर हाँ होते
वो आके कहने लगा कि प्लीज मेरे मम्मी को बोलना कि मैं घर आ गया हूँ,
ऐसा कुछ बोला,
तो मैं कहा यार तू घर आ गया तो बाजू में घर है तू ही जाके बोल,
तो घर में क्यों नहीं बोलता जाके,
नहीं आप जरा बोल देना मम्मी, वो उस समय गणपति के दिन चल रहे थे नीचे, यहाँ गणपति बैठता है ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा बोलूंगा बोलूंगा, फिर वो डायरेक्ट अपने घर में गए
नींद में, तो बाद में फिर पिताजी भी आए उसके बाद में कहने लगे नहीं नहीं उसका ऐसी आदत है, फिर उन्होंने उसको कैमरे पे देखा, वो सीसीटीवी में लगाया के रखा है, कितने बजे जाए गया कितने बजे, वो सब उसमें रिकॉर्ड होता है ना नहीं ऐसे जो होता है ना कोई केसेस बड़े लोगों के भी होते हैं अंदर से तो उनको लॉक में रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी नुकसान भी हो सकता है ना कुछ भी हो सकता है। इस त्यागृति वाली निद्रा है डीप स्लीप इतनी डीप कि कुछ क्या कर रहे है पता नहीं चलता है हाँ हाँ जिसे बोलता भी है सब सब रेगुलर देखने वाले को ऐसा नहीं बन वो तो उसके उसमें है जैसे ट्रांस हम कहेंगे उसको ट्रांस में चल रहे कहते हैं ना उसको
कोई भी बंद
हाँ शोभा कुछ बोल रहे हैं बोलो बोलो हाँ हाँ नहीं 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 वो आँख खोलते हैं मगर वो उनकी जो निद्रा का ही असर होता है चलते हैं कहाँ सब कुछ कर लेते हैं। ये तो पहली बार हमने वो नाथ माधव की वीर धवल ऐसे स्टोरी आपने पढ़ी होगी हाँ वो तो क्यों चलो हाँ देव उदय की उचित अब देखते ये स्वोदय परोदय की बात चल रही है तो ये सब प्रकृति अभी हमने जो यहाँ गिनी वो स्वोदय परोदय से बनती है क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। ये अन्य प्रकृतियों में तो हम समझते हैं जैसे तीर्य वायु बांध रहे हैं तो नारकी भी बांधते हैं देव भी बांधते हैं मनुष्य भी बांधते हैं अन्य आयु के उदय में भी बनती है वो तो आसान है समझना पर ये ज्ञान वृद्धि वगैरह और अनंतानुबंधी के लिए थोड़ी समझना आवश्यक था। अब आगे का प्रश्न हाँ बंद है उदय चार दर्शनावरण का तो नियम से है नौ का बंद है ज्ञानावरण में क्या है पांच का ही उदय और पांच का ही बंद है। ज्ञानावरण में तो आसान है लगाना और उसका उदय भी है बारहवें तक और बंद है दसवें तक उसमें तो बिल्कुल फिट हो जाता है पर इन इन पांच निद्रा होते हुए भी उदय एट ए टाइम एक का ही है बैटरी हो गई चार्जिंग खलास हो गया ये अमेरिका से है हाँ 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 उनकी अभी रात चल रही है। अभी ये प्रश्न आगे वाला प्रश्न देखो उक्त प्रकृतियां यानी कर्मों की बात है ना क्या सांतर है क्या निरंतर है सांतर यानी अंतर सहित विद गैप बनती है फिर गैप पड़ता है बनती है फिर गैप पड़ता है उसको कहेंगे सांतर और निरंतर यानी कंटिन्यूएशन में बनती है उसको कहेंगे निरंतर या क्या सांतर निरंतर बनती है। हाँ अभी हम 33 नंबर के पेज पर है नया पैराग्राफ पढ़ेंगे देखो फिर पढ़ती हूँ उक्त प्रकृतियां क्या सांतर क्या निरंतर या क्या सांतर निरंतर बनती है इसका अर्थ कहते हैं स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क निरंतर बनती है क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ध्रुवबंधी प्रकृतियों का अर्थ क्या है अपने बंधे विच्छित्ति तक बनती ही चली जाती है सारी की सारी उसको ध्रुवबंधी कहते हैं। ये ध्रुवबंधी कितनी भी देखी थी हमको याद है अब ब्रह्मा हाँ 82 नहीं 47 47 देखी थी कौन कौन सी बोलो
19
पांच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण और पांच अंतराय 19 हो गए मोनी की भी 19 के नौ मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा नौ नाम कर्म की नौ जिसको हम ध्रुवबंधी नौ प्रकृतियां कहते कौन सी तेजस और कारमान वर्णादि चार अगुरु लघु उपघात और निर्माण
नहीं उपघात नहीं लेना
वो ध्रुवोदय में नहीं लेना है आप घोटाला कर
ध्रुवोदय
ध्रुवोदय हाँ वो ध्रुवोदय में नहीं लेना उसका उदय वहाँ शरीर ये वहाँ पहुँचने पर शुरू हो जाता है। तो देखो ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं हमने देखा पहले और दूसरे गुणस्थान में इनका बंध तो कंटिन्यू, पांचों ज्ञान आवरण ये सब जो जो अभी यहाँ तो किसकी बात चल रही है अपनी, यहाँ स्थान वृद्धि तीन की बात है, प्रश्न जो पूछा था उसी प्रकृति की बात है। स्त्री वेद को मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि सांतर बांधते हैं, देखो क्योंकि इसका तो बंध का लिमिटेड पीरियड है, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बन सकते, उसका अपना अंतर्मूर्त फिक्स है। जैसे नपुंसक वेद का अंतर्मूर्त बड़ा होगा, स्त्री वेद का अंतर्मूर्त उससे छोटा होगा, पुरुष वेद का अंतर्मूर्त उससे छोटा, पर अंतर्मूर्त तक बनती है, बाद में नियम से अन्य वेद का बंध होगा ही होगा। पहले गुणस्थान में तीन वेदों में से किसी एक का वेद का उदय सॉरी बंध होता रहता है। हाँ, नपुंसक वेद को बंधेगा या स्त्री वेद को, या उदय एक ही होता है, उदय एक ही है। हाँ, जन्म से मरण तक वही उसी वेद का उदय है। मिथ्या दृष्टि तीनों वेद को पलट पलट कर बांधता है। हाँ, वो भोग भूमि में वो नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, बस इतनी बात है, क्योंकि वहां देवगति ही बनती है और देवगति में स्त्री या पुरुष का ही बंध होगा। बाकी मिथ्या दृष्टि है तो तीन में से बंध, हाँ, और सासाधन वाला है तो स्त्री या पुरुष वेद में से बंध, वहां नपुंसक वेद का बंध नहीं है, पर है तो वो प्रतिपक्ष से, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सांतर, बंद हुआ फिर रुक गया, फिर बंद हुआ फिर रुक गया। ख्याल में सांतर का वो शब्द का कैसे तैयार हुआ, अंतर सहित उसको सांतर कहेंगे, और निरअंतर ने अंतर से रहित कंटिन्यूअस बंद। तो कहते स्त्री वेद को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि सांतर बांधते हैं, क्योंकि बंधक काल के क्षीण होने पर, क्षीण होने पर ने उसका जो बंध का अंतर्मूर्त है वो पूर्ण होने पर नियम से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध संभव है, संभव नहीं होता ही। तिर्यक आयु को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि निरंतर बांधते हैं, देखो इसको सांतर नहीं कहा, क्योंकि फिर नहीं बंधी और फिर बंधी, फिर नहीं बंधी फिर बंधी, ऐसे नहीं, वो तो निरंतर अंतर्मूर्त तक निरंतर बंधी, क्योंकि काल के क्षय से बंध के रुकने का अभाव है। हाँ, चार आयु निरंतर है। तिर्यक गति यानी उसका ऐसा नहीं, आयु बंध का जो काल है वहां तक तो बंधेगी ही बंधेगी, ऐसा कि नहीं कि उसे बीच में रुकेगी अब अन्य आयु बंधे, ऐसा उसमें नहीं होता। निरंतर का अर्थ समझते ना, आप कहेंगे कंटिन्यूस कहाँ बंध रही है, बस एक बार बंध गई और वो भी कभी कभी बनती है, पूरे लाइफ टाइम तक कहाँ बंधी, ये उसका अर्थ नहीं है निरंतर का अर्थ, वो ध्रुवबंदी का वो अर्थ हुआ था। तिर्यक गति और तिर्यक प्राज्ञान पूर्वी को सांतर निरंतर बांधते हैं, ऐसा क्यों कहा तिर्यक गति तिर्यक सांतर निरंतर, क्योंकि बांधने वाले कौन है, पहला और दूसरे गुणस्थान वर्ती। अब कहते निरंतर बांधने वाले कौन है, इनमें सातवें नरक के नार के निरंतर बांध रहे हैं, अभी जो अग्नि का एक वायु का एक वो तो इसी को बांधते हैं, वो मनुष्य गति को बांध ही नहीं सकते, तो उनके लिए वो निरंतर कहलाएंगे, और अन्य जो प्रतिपक्ष सहित बांधते उनके लिए सांतर कहलाएंगे। इसीलिए शंकाकार पूछते प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के बंध की उपलब्धि होने से सांतर बंध भले ही हो किंतु निरंतर बंध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। ये क्या कह दे, तिर्यक गति का निरंतर बंध कैसे हो सकता है, उसका समाधान। इस शंका का उत्तर कहते कि यह कोई दोष नहीं, क्योंकि तेज कायिक और वायु कायिक मिथ्या दृष्टियों तथा सप्तम पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टियों के भव से संबद्ध संक्लेश के कारण, यानी उस भव में ऐसा ही संक्लेश होता है कि इसका कंटिन्यूस उसी का बंध है, उक्त दोनों प्रकृतियों का निरंतर बंध पाया जाता है। देखो ये निगोद भी जीव मनुष्य गति का बंध कर सकते हैं, परंतु अग्नि का एक वायु का एक ऐसे है तो तिर्यक गति का ही कंटिन्यूस बंध है, वैसे ही उसकी उस जाति के उनके परिणाम होंगे। शंका, सासाधन समय दृष्टि इन दोनों प्रकृतियों के निरंतर बंध कैसे है, यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि सप्तम पृथ्वी के सासाधन समय दृष्टियों के तिर्यक गति को छोड़कर अन्य गतियों का बंध ही नहीं होता, यानी सातवें नरक के नारकी जो है वो तो सम्यक दृष्टि मनुष्य गति का बंध करेगी, बाकी इनके तो कंटिन्यूअस तिर्यंच गति का ही बंद होता है। अन्य नारकियों के मिथ्या दृष्टि को भी मनुष्य गति और तिर्यंच गति अल्टरनेटली बनती रहती है, इनको मात्र तिर्यंच गति का ही बंद होगा। पहले गुणस्थान में तेजस का एक वायु का एक को भी लिया, दूसरे गुणस्थान के लिए नारकी को लिया, यानी भले वो छह आवली तक रहे तो कंटिन्यूअस तिर्यंच गति ही बांधेगा वहां पर। 34 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं अब, अन्य जो प्रकृति आ रही उसकी चर्चा करेंगे। चार संस्थान, चार सहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियां स्त्रीवेद के समान है। स्त्रीवेद के समान क्यों कहा? क्योंकि वो सांतरबंदी है, उनके प्रतिपक्ष का ही बंद होता है, क्योंकि सांतरबंधित्व के प्रति इन प्रकृतियों में स्त्रीवेद से कोई भेद नहीं है। ख्याल में ना इसका भी वाक्य का अर्थ, जैसे स्त्रीवेद का बंद सांतर होता है वैसे इनका भी होता है, क्योंकि पहले दो गुणस्थान वाले इनके प्रतिपक्ष को भी मानते हैं। ये प्रकृतियां यहाँ बंद से रुकती है और बाकी उनकी अपोजिट जो प्रशस्त प्रकृतियां ऊपर बनती रहेगी। हाँ, नीच गोत्र तिर्यक गति के समान है, जैसे वो तेजस का एक वायु का एक है और वो सातवें नरक के तिर्यंच गति के साथ वो नीच गोत्र ही बांध रहे, क्योंकि तेज का एक और वायु का एक तथा सप्तम पृथ्वी के नारकियों में नीच गोत्र का निरंतर बंध पाया जाता है। अब सूत्रोक्त प्रकृतियां, सूत्रोक्त है ने वो अभी सातवें सूत्र में बताए हुए दूसरे गुणस्थान की बंधे विच्छित्ति वाले, क्या प्रत्ययों से बनती है या क्या उनके बिना? प्रत्यय का अर्थ क्या देखा था? वो मिथ्या तो असंयम वगैरह जो देखा था। हाँ, तो कहते कि प्रत्यय के बिना तो किसी का बंध नहीं होता, तो कौन से प्रत्यय वो बताएंगे? इसका अर्थ कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, अभी तो मिथ्या दृष्टि भी इन प्रकृतियों को बांधता है, तो उसके वो सारे प्रत्यय बताएंगे, चारों प्रत्यय। या डिटेल में बताना है तो 57 में से दो माइनस किए थे। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग संज्ञा वाले चार मूल प्रत्ययों से और 55 उत्तर प्रत्ययों से, उत्तर है उसके भेद सब डिविजन्स, तथा ये तो नाना जीवों की अपेक्षा बता दिया। अब एक जीव को एक समय में कितने हो सकते हैं उसकी भी हमने कल देखी थी बातें, तथा एक समय में संभव होने वाले 10 और 18 जघन्य उत्कृष्ट प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को बांधते हैं। ये 10 प्रत्यय हमने देखे थे, कौन गिनना चाहते हैं? 10 प्रत्यय गिनो। 5 मिथ्यात्व में से 1 मिथ्यात्व, हाँ ये नहीं कह रहे अभी सारे मिथ्यात्व के प्रत्यय, तो बाकी भी कह गिनो ना कषाय के, वो सारे मिथ्या हमने मोहिनी के कुट देखे थे। हाँ, 4 कषाय अगर लेते हैं तो वहाँ 10 नहीं होगा,
8-9-10
अनंत अनुबंधी का विसर्जन वाला लेना है तो 3 लेना, 3 यानी 3 क्रोध या 3 मान इस तरह से। हाँ, ये 3 हो गए। हाँ, एक युगल पहले लेना।
हाँ,
एक वेद लिया भैया गुस्सा यहाँ नहीं लेना। अब 2 असंयम, 1 इंद्रिय से 1 काय का विराधक, ये 2 हो गए ना, ये 9 अभी हो गए। अब योग में से एट ए टाइम एक ही होगा, ये 10 हो गए। अब 18 गिनो, अभी मैक्सिमम लेना है हमको, एक मिथ्यात्व है ना, 5 मिथ्यात्व में से 1 मिथ्यात्व, 4 क्रोध या 4 माने, ये 4 कषाय, 1 वेद, 1 युगल, भय जुगुप्सा दोनों लेना, यानी वो तो मोहनीय के ही 10 हो गए मिथ्यात्व और कषाय मिलकर। भय नहीं, एक युगल और भयजुगुप्सा, ये 10 हो गए मोहनीय के, 10 हो गए। हाँ, अब आपको क्या है, असंयम गिनना है, मैक्सिमम एक इंद्रिय के साथ 6 कायों की विराजना, वो 7 गिनेंगे। हाँ, और एक योग, ये 18 हो गए। ये डिटेल में देखे, आप कल नहीं थी ना। हाँ, देखो देखो फिर से हम देखते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम ये कैसे गिनना अभी 5 मिनट में बता देती हूँ, क्योंकि आप थी नहीं। देखो 57 में हमको डिटेल बताना है, एक झुके एट अ टाइम। जो 57 देखे थे हमने, या अभी मिथ्या दृष्टि को 55 होते हम देखे थे, वो अनेक जीवों को कौन कौन से पॉसिबल है बताएंगे। पर एक समय में एक जीव को एकांत मिथ्या तो होगा, या विपरीत होगा, या कोई एक तो होगा। तो 5 में से एक मिथ्या, देखो मिथ्या तो कितने होते हैं, एक जीव की अपेक्षा एक समय में लेना, वही जीव अन्य समयों में अन्य रूप से परिणमेगा। अभी मिथ्यात्व के हमने 5 भेद देखे थे, असंयम के हमने 12 भेद देखे थे, क्योंकि 6 इंद्रिय के और 6 प्राणी के, और फिर कषाय में 25 देखे थे हमने, और योग के 15। अभी हम एक जीव का एट अ टाइम देखना है, एक जीव का एट अ टाइम इसमें से एक होगा, कोई एक एकांत या विपरीत या कोई एक मिथ्यात्व, पांचों एट अ टाइम नहीं है, क्योंकि एक टाइप है, क्योंकि उसकी मान्यता किसी एक में अभी चल रही उस वर्तमान में। असंयम में एक इंद्रिय संबंधी, और ये क्या करता है, एक काय की विराधना होगी, या तो पृथ्वी काय की या जल काय की या ऐसे ऐसे, कभी कभी हो सकता है 2 कायुकों की, कभी कभी 6 कायुकों की एट अ टाइम वो विराधना कर, एट अ टाइम कितने कर सकते हैं उसकी बात है, कभी अकेले जल काय की होगी, कभी 6 कायुकों की होगी, तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, 1 की या 2 की या 3 की या 4 की या 5 की या 6 की, हम इसको एक सू ही लेते हैं, कॉम्बिनेशन अलग हो गए, एक जीव एट अ टाइम क्या कर सकता है उसकी बात है। अब कषाय एट अ टाइम कौन से कर सकते हैं, 4 क्रोध या 4 मान, 4 माया, देखो इसको ऐसा लिखना, ये 4 4 4 4, 3 वेद में से कोई एक वेद होगा, एक 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 लिखेंगे, 2 युगल हास्यरति होगी या आरति शोक होगा, ये उदय की बात चल रही है। कभी कभी भय और जुगुप्सा दोनों हो गए, कभी अकेले भय का उदय होगा, कभी अकेला जुगुप्सा का उदय होगा, कभी दोनों का ही उदय न होगा, ये उसके इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो इसमें से कैसे गिनना हम आपको बताएंगे। योग में एट अ टाइम किसी जीव को एक ही योग होगा, 2-4 योग एट अ टाइम नहीं हो सकते, अभी इसको गिनना है। अब मिनिमम जब गिनना है तो हमने इसमें से एक मिथ्यात्व लिया, एक इंद्रिय संबंधी, एक ही काय की विराधना की, ये 2 हो गए। अब 25 कषायों में से मिथ्या दृष्टि को देखना है, तो मिथ्या दृष्टि जो असंय अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके जो मिथ्यात्व में आया है, उसके एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो 3 का ही उदय है उसके। तो अभी इसमें से एक एक लाइन में से एक एक गिनो, ये 3, 1 4, 2 6 और 0, ये 6, ये 3 1 4 2, 3 और 1 4 2 6, ये 0, ये 6 हो गए ना, और ऊपर के 3 9 हो गए, और 1 10 हो गया। अब मैक्सिमम गिनना है, वहां पर भी मिथ्या तो एक ही होगा एट अ टाइम, इंद्रिय भी एक ही एट अ टाइम होगी, और यहाँ 6 होगी, 6 कायों की विराधना हो रही है उसकी, तो ये 7 हो गए, 7 1 8। अब यहाँ गिनना, अभी अनंतानुबंधी वाला लेना, 4 1 5 2 7, और ये दोनों लेने, 9, ये 9 और ये 8, 17 और 1 18, यानी 10 मिनिमम और 18 मैक्सिमम। उसमें इसको बदलते रहो तो उसमें भी चेंजेस हो जाएगी, इसको भी बदल सकते हैं और इसको भी जुगुप्सा या इसको भी अलग अलग ले सकते हैं, तो ये उसके कॉम्बिनेशंस हो गए। अब हम यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हो।